दिन भर तारीख 12 जनवरी दिन बृहस्पतिवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। अमेरिका ने चीन से कहा कि उसे दक्षिण चीन सागर में टापू बनाने के परिणाम भुगतने होंगे। चीन ने कहा यह है उसका अधिकार क्षेत्र। बिहार के औरंगाबाद में CISF जवान ने अपने ही साथियों पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, 4 की मौत।
बलबीर सिंह नाम का जो सिपाही है जो कि अलीगढ़ का रहने वाला है, उसके कुछ साथियों से कुछ झड़प हुई, उसके बाद वो अचानक से जब ड्यूटी शिफ्ट हो रही थी तो उसके दौरान उसने इंसास राइफल से 32 राउंड गोलियां फायर किया।
अमेठी में एक ही परिवार के 11 लोगों के शव घर के अंदर मिलने की घटना का रहस्य है बरकरार। कार्यक्रम में आपकी राय भी, लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार, संदीप सोनी से। चीन ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि साउथ चाइना सी में द्वीप बनाने के नतीजे चीन को भुगतना होंगे। रेक्स टिलरसन का कहना है कि अमेरिका को इस बारे में चीन से दो टूक शब्दों में बात करने की ज़रूरत है। इसके जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन के पास साउथ चाइना सी में इस तरह की गतिविधियों का अधिकार है और वो अपने इस अधिकार की रक्षा करेगा। पोलैंड में अमेरिकी टैंकों और सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती को रूस ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि अमेरिका का ये कदम रूस के हितों के विपरीत है। दूसरी ओर उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो का कहना है कि उसे इस पूरे मामले में रूस के लिए कहीं कोई खतरा फिलहाल नज़र नहीं आता। नेटो के इस पूर्वी मोर्चे पर हजारों अमरीकी सैनिकों, टैंकों और हथियारबंद वाहनों को तैनात करने की योजना है। इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इसराइल फलस्तीनी संघर्ष पर पेरिस में अगले रविवार प्रस्तावित सम्मेलन की कड़े शब्दों में निंदा की है। इस सम्मेलन का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच शांति प्रक्रिया को दोबारा आरंभ करना है, लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल इस बैठक के नतीजे को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा।
It's a rigged conference, rigged by the Palestinians with French auspices to adopt additional anti-Israel stances.
ये सम्मेलन एक धांधली है जो फलस्तीनियों ने फ्रांस के साथ मिलकर की है, जो इसराइल विरोधी है। इससे बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी बल्कि पीछे की ओर जाएगी। हम इसे मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अब से कुछ देर पहले ये खबर आई है कि एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। वे 21 फरवरी 2017 से अपना कार्यभार संभालेंगे। खराब खाने की शिकायत करते सीमा सुरक्षा बल के एक जवान के वीडियो के बाद अब एक और वीडियो सामने आया है। इस नए वीडियो में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का एक जवान सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच होने वाले कथित भेदभाव का जिक्र कर रहा है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का दावा है कि वो इस मामले पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने संवाददाताओं से कहा,
मैं मॉनिटर कर रहा हूं क्योंकि 2012 में या 13 में कंट्रोलर ऑडिटर का रिपोर्ट है, उसके हिसाब से हम लोग कई इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। अभी केवल मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, चिकन रहती है वो वहाँ ही काटते थे, बुचर खाना होता था हर एक आर्मी यूनिट में, ये क्वालिटी इतना मेंटेन नहीं होता था। अभी हम फ्रोजन चिकन 26 सेंटर में सक्सेसफुल सप्लाई कर लिया है। नाउ वी हैव इशूड डायरेक्शन नेक्स्ट 2 ईयर्स में FASSI का अप्रूव्ड फ्रोजन चिकन सभी यूनिट को मिले।
ये थे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। बिहार के औरंगाबाद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक जवान को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए जवान पर अपने 4 साथियों की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक इस जवान का नाम बालवीर सिंह है, जो अवकाश नहीं दिए जाने से दुखी और नाराज था। खबरों के मुताबिक बालवीर ने तनाव से मुक्ति पाने के लिए हाल ही में योग अभ्यास का प्रशिक्षण भी लिया था। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें शनिवार को पोंगल त्यौहार से पहले सांडों की लड़ाई जल्लीकट्टू आयोजित करने का फैसला सुनाने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति R Bhanumathi की पीठ ने कहा कि न्यायालय से फैसला सुनाने के लिए कहना न्यायसंगत नहीं है। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर, और आज मैं हूं मोहनलाल शर्मा। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम अंतर्राष्ट्रीय खबर से कर रहे हैं। चीन और अमेरिका टकराव की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने चीन की दुगती रग छूते हुए कहा कि उसे दक्षिणी चीन सागर में टापू बनाने के परिणाम भुगतने होंगे। अब चीन ने इन बयानों को खारिज करते हुए कहा कि उसे क्षेत्र में काम करने का पूरा अधिकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमरीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक जो संकेत दिए हैं उससे जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में चीन के प्रति अमरीका की नीति दुनिया का ध्यान खींचेगी। बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्टों का सार सुनिए राजेश जोशी से।
ये विवाद अमेरिका के नए नामांकित होने वाले विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के बयान से शुरू हुआ। रेक्स टिलरसन ने अमेरिकी सेनेट की विदेश संबंध समिति के सामने कहा कि चीन को हमें पहले साफ संदेश देना चाहिए कि वो दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम टापू बनाना बंद करे और जो टापू उसने बना लिए हैं उन तक चीन को पहुंचने नहीं दिया जाएगा। पर टिलरसन के इस बयान को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने खारिज कर दिया।
अमेरिका की तरह ही चीन को भी अपनी संप्रभुता वाले इलाके में कोई भी सामान्य गतिविधि करने का अधिकार है और इस पर कोई विवाद नहीं है। हमें उम्मीद है कि इस इलाके से बाहर के मुल्क इस मूलभूत समझदारी का सम्मान करेंगे जो कि दुनिया और इस क्षेत्र के देशों के हित में होगा।
ये थे चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग के शब्द। दक्षिण चीन सागर के इस इलाके को चीन अपना मानता है, लेकिन वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे कई देशों को उसके इस दावे पर एतराज है और वो भी समुद्र के इस इलाके पर दावा करते आए हैं। पिछले साल जुलाई में एक अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल ने चीन के दावों के खिलाफ फैसला सुनाया था, लेकिन चीन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। यूं तो ओबामा प्रशासन भी दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों का विरोध करता रहा है, लेकिन उसने कभी रास्ते बंद करने की बात नहीं कही। अब नए अमरीकी प्रशासन ने कृत्रिम टापुओं तक चीन को न पहुंचने देने की बात कही है, लेकिन ये नहीं बताया है कि ये रोक कैसे लगाई जाएगी। चीनी प्रवक्ता ने इस पर टिप्पणी करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि वो काल्पनिक चीजों पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी चुनाव के समय से ही कई तरह की बात करते रहे हैं और हर बात का जवाब नहीं दिया जा सकता।
उधर पोलैंड में अमेरिका ने भारी तादाद में टैंक और सैनिक तैनात कर दिए हैं। बड़ी तादाद में इस तैनाती को रूस ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका का ये कदम रूसी हितों के खिलाफ है। दूसरी ओर उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो ने कहा है कि उसे इस पूरे मामले में रूस के लिए कहीं कोई खतरा नजर नहीं आता। कितना बड़ा खतरा है, विश्लेषण के लिए मैंने बात की ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के नंदन उष्णी उन्नीकृष्णन से और यही पूछा।
देखिए, ऐसा है कि रूस बहुत पहले से, बहुत सालों से ऑब्जेक्शन कर रहे थे जब नेटो उसके बॉर्डर्स तक जा रहे थे। तो ये जो डिप्लॉयमेंट है अमेरिकन फोर्सेस के पोलैंड में, रूस को ये लगेगा कि ये खतरा है ही। अब प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन और पोलैंड कह रहे हैं कि ये डिप्लॉयमेंट है पोलैंड को बचाने के लिए रूस से। तो अब ये तो चलता रहेगा एक्यूजेशन, एक वन अगेंस्ट अदर एस दे से। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में जो पेंटागन चलाने वाले लोग हैं, ये उनके आखिरी एक्शंस है जिससे वो किसी ना किसी तरीके से ट्रंप को रोकना चाहते हैं रूस से अच्छे संबंध बनाने के लिए। पर मुझे नहीं लग रहा है कि उनके ये सब करने से कोई फर्क पड़ेगा।
लेकिन जिस तरह से अमेरिका और रूस के आजकल रिलेशंस हैं, संबंध हैं, खासकर वहां के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिस तरह की बातें हो रही हैं, उसको देखकर क्या लगता है कि दोनों देशों के बीच ये जो तनातनी है और बढ़ेगी?
एक तो चाहे ट्रंप इलेक्ट होते या ना होते, रूस और अमेरिका लड़ाई नहीं करने वाले थे। रूस किसी नेटो के देश को छेदने वाले नहीं थे और अमेरिका भी रूस के साथ किसी जगह पे हॉट वॉर करना नहीं चाह रहे थे। अब जब ट्रंप इलेक्ट हुए तो संबंध है कि रिलेशंस उन दोनों देशों के बीच में थोड़ा सा इम्प्रूव होंगे, पर अभी देखना पड़ेगा कि पूरा रीसेट होगा या सिर्फ कई जगहों पे इम्प्रूवमेंट होगा, जैसे सीरिया पे उनका कोई एग्रीमेंट होगा या यूक्रेन में।
तो आप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये रिश्ते बेहतर हो सकते हैं?
मुझे लग रहा है कि ये बेहतर होंगे, क्योंकि अभी तो वो बिल्कुल ही زمین سے نیچے بھی ہے, تو یہ زمین کے اوپر آ جائیں گے, پر اگر یہ آسمان تک پہنچ جائیں گے یہ مجھے امید نہیں ہے اس وقت.
آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے نندی انی کرشنن وشلیشن کر رہے تھے جو پولینڈ میں امریکہ نے بھاری تعداد میں ٹینک اور سینک تعینات کیے ہیں اس کا, اور خاص کر کس طرح کی ودیش نیتی اب آنے والے دنوں میں دکھائی دے گی ڈونلڈ ٹرمپ کی.
دن بھر شارٹ ویو 41, 31 اور 25 میٹر بینڈ یعنی 7,565, 7,600, 9,510, 11,995 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو 1,413 کلو ہرٹز پر.
آپ سن رہے ہیں بی بی سی ہندی سیوا کی دوسری سبھا دن بھر, اور اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ این چندر شیکھرن کو ٹاٹا سنس نے اپنا نیا چیئرمین نیوکت کیا ہے. وہ 21 فروری 2017 سے اپنا کاریہ بھار یعنی کہ پد بھار گرہن کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سائرس مستری کے جانے کے بعد سے ہی ٹاٹا سنس میں گھماسان مچا ہوا ہے. سیدھے کارکرم میں شامل کر رہا ہوں سمیر ہاشمی کو جو کہ ہمارے بزنس سنواداتا ہیں. سمیر, سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ جو این چندر شیکھرن ہیں وہ کیا ہیں, اور اب جبکہ یہ ادھیکش چن لیے گئے ہیں.
این چندر شیکھرن جو ہیں وہ ٹی سی ایس یعنی کہ ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز جو آئی پی کمپنی ہے ٹاٹا گروپ کی, اس کے چیف ایگزیکٹو سی ای او ہیں پچھلے 8 سال سے, اور ٹاٹا گروپ میں وہ پچھلے 30 سال سے کام کر رہے ہیں. بلکہ ٹاٹا ٹی سی ایس کی جو میں بات کر رہا تھا یہ ان کی پہلی ہی نوکری تھی جہاں پہ انہوں نے 1987 میں جوائن کیا تھا. این چندر شیکھرن جو کا جو اناؤنسمنٹ ہے کہ ان کو بنایا گیا ہے ٹاٹا گروپ کا نیا ادھیکش, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ٹاٹا گروپ کے ہی میں اتنے سال سے کام کر رہے ہیں کہ کس طرح ٹاٹا گروپ کام کرتا ہے, جو اس کے اندر کی جو کمپلیکسٹیز ہیں یعنی کہ جو اس میں وبھن طرح کے جو پریشانیاں جو ٹاٹا سنس نے دیکھی ہیں, ٹاٹا گروپ نے دیکھی ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں, اس کو سب ایسے ان لوگ کو ایسے لوگ ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو نہ اس کو قاعدے سے سنبھال سکے اور ان سب ایشوز کو سنبھالنے کے باوجود ایٹ دا سیم ٹائم گروپ کو آگے لے سکے. اس لیے یہ کافی نام جو تھے وہ دوڑ میں تھے پچھلے 3-4 مہینے میں. لیکن رتن ٹاٹا جو کہ انٹرم چیئرمین تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ کوئی اندر کا ہی آدمی ہونا چاہیے کیونکہ وہ اس پرستھتی کو زیادہ اچھی طریقے سے سنبھال پائے گا اور گروپ کو آگے لے جا پائے گا, یہ سب سے بڑا ریزن تھا.
سمیر, یہ بتائیے کہ جو این چندر شیکھرن ہیں اب جبکہ وہ ادھیکش ہو گئے ہیں, کتنی بڑی چنوتی ہوگی اس پوری لیگیسی کو آگے لے جانے کے لیے؟
چنوتی تو بہت بڑی ہے کیونکہ ٹاٹا گروپ جو ہے 150 سال پرانی کمپنی ہے یعنی گروپ ہے, اور اس کے 100 سے اوپر کمپنیاں ہیں یعنی الگ الگ سیکٹروں میں یہ کام کرتے ہیں. اسٹیل بھی بناتے ہیں اور جہاز بھی اڑاتے ہیں, ان کی ایئر لائن بھی ہے, نمک بھی بناتے ہیں, تو ہر طرح کے بزنس میں ہیں. لیکن پرابلم اس وقت سب سے بڑی جو پرستھتی ٹاٹا گروپ کے لیے یہ ہے کہ جب سے سائرس مستری کو نکالا گیا ہے, سائرس مستری نے کافی گمبھیر ایلیگیشنز لگائے ہیں گروپ کے اوپر, اور ٹاٹا گروپس کی جو چھوی ہے اگر آپ دیکھیں وہ بہت اسٹرانگ چھوی رہی ہے کہ یہ صاف ستھرے طریقے سے کام کرتے ہیں, اپنے امپلائیز کو بہت ویلیو کرتے ہیں, کمپنی کے جتنے لاز ہیں بھارت میں اس کو بہت اچھی طرح سے فالو کرتے ہیں. تو ان سب ایلیگیشنز کے بعد کافی سوال اٹھ رہے ہیں, تو اس چھوی کو پھر سے صحیح کرنا سب سے بڑا ان کے لیے چیلنج رہا ہوگا, اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو کافی ان کے بزنسز ہیں جو اس وقت اچھی حالت میں نہیں ہیں ان کو بھی صحیح راستے پہ لانا پڑے گا. تو چنوتی بڑی ہے لیکن ماننا یہ جا رہا ہے کہ چندر شیکھرن جو ہیں وہ صحیح آدمی ہیں اس پرستھتی کو سنبھالنے,
یعنی کہ اچھی چھوی چمکانی ہوگی اور جو سنس میں ٹاٹا سنس میں جو گھاٹے کی کمپنیاں ہیں ان کو بھی ابھارنا ہوگا. بہت بہت شکریہ سمیر ہاشمی سیدھے ممبئی سے اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے. یہاں سے رخ ہم بہار کا کر رہے ہیں جہاں کی اورنگ آباد ضلع کے نبی نگر پاور جنریٹنگ کمپنی پریوجنا میں تعینات کیندری اودیوگک سرکشا بل یعنی کہ سی آئی ایس ایف کے ایک جوان نے آج اپنے ہی ساتھیوں پر تابڑ توڑ گولیاں چلائیں. گھٹنا میں 4 جوانوں کی موت ہو گئی. آروپی جوان کو ہتھیار سمیت گرفتار کیا. میں نے بات کی اورنگ آباد کے پولیس ادھیکشک ستیہ پرکاش سے اور ان سے پوچھا کہ کس طرح سے اور کب یہ گھٹنا گھٹی.
یہ گھٹنا صبح میں 12:30 بجے نبی نگر اورنگ آباد میں ایک بلاک ہے, ایک تھانہ انترگت میں این پی جی سی ایل پلانٹ ہے جہاں پر سی آئی ایس ایف کی سیکورٹی فورس وہاں پہ رہتی ہے. 12:30 بجے ایک بلبیر سنگھ کا ویکتی نام کا جو سپاہی ہے جو کہ علی گڑھ کا رہنے والا ہے, उत्तर प्रदेश, उसके कुछ साथियों से कुछ झड़प हुई। उसके बाद वो अचानक से जब ड्यूटी शिफ्ट हो रही थी तो उसके दौरान उसने इंसास राइफल से 32 राउंड गोलियां फायर किया उसने, जिसके कारण से दो लोगों की घटनास्थल पर ही तुरंत ही मौत हो गई और दो लोग अस्पताल ले जाने के क्रम में डेथ हो गया उनका।
तो इस तरह की घटनाओं में जो मोटिव होता है, यानी कि जो मकसद होता है, उद्देश्य, वो क्या था?
मेजर मोटिव ये है कि जो फोर्सेस होते हैं उनमें थोड़ा बहुत इंटरनल डिस्प्यूट्स तो रहता है लोगों में, आगे बढ़ने के होड़ में या थोड़ा हम ऊपर हो जाएं।
इनसे पूछताछ हुई तो क्या बात सामने आई, क्यों फायरिंग की घटना हुई?
जो जवान से जिसने फायर किया, बलवीर सिंह नाम के जवान ने जो फायरिंग किया था, उससे पर्सनली मैंने इंटरोगेट किया तो पहला तो तीन चीज उसने बताया कि एक तो जो जवान थे वो कुछ उसको चिढ़ाते थे, कुछ घर परिवार को लेकर के गाली गलौज करते थे, स्लेजिंग वाली बात उसने बताई है। उसके बाद फिर मेंटली वो काफी डिस्टर्ब रहता था क्योंकि उसके पिताजी की भी कई साल पहले गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया कुछ।
तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मानसिक दबाव और तनाव में या डिप्रेशन में?
एक्चुअली ये मानसिक तनाव ही है उसका, क्योंकि कुछ दिनों पहले योगा का कोर्स के लिए भी CISF ने उसको भेजा था और वो 5 जनवरी को ही योगा कोर्स करके लौटा था। तो कुछ मोटिव तो ये भी लग रहा है, कुछ एक मोटिव ये है कि ये मेंटली डिस्टर्ब डिप्रेस्ड कहिए, जिसके कारण से इसको लगा कि सारी दुनिया बेकार है।
तो अब जो बलबीर सिंह है ये पुलिस की गिरफ्त में है और आगे क्या?
ये पुलिस की गिरफ्त में है और इनको जेल भेज दिया गया, हथियार बरामद कर लिया गया है।
तो बिहार के औरंगाबाद में CISF जवान ने अपने ही साथियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, 4 लोगों की मौत हो गई, ये जानकारी दे रहे थे औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश। रुख उत्तर प्रदेश का करते हैं, जहां अमेठी जिले में पिछले दिनों में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई थी जिसमें एक ही परिवार के 11 लोगों के शव घर के भीतर मिले थे। इन शवों में घर के मुखिया जमालुद्दीन को छोड़कर बाकी सभी महिलाओं और लड़कियों के शव थे। सभी महिलाओं की एक मौत कथित तौर पर गर्दन काटने से हुई और इसके बाद घर की छत पर बने कमरे में जमालुद्दीन भी लटके पाए गए। घटना को 1 हफ्ता बीत चुका है लेकिन इन सभी लोगों की मौत का रहस्य बरकरार है। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र उसी महुना गांव में पहुंचे जहां ये घटना हुई थी, वहां उन्होंने इस घटना के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश की, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
कोई समय 7 बजे हम लोग सो के उठे तो जान सब उधर से भगदड़ उधर से मची आए तो जाना हम लोग नहीं, हम लोग जानबे नहीं भाई, हम कहा जानी, साहेब लोग आए सब तो जाना गए और नहीं का पता हम लोग।
रईसा बेगम का घर जमालुद्दीन के घर से बिल्कुल लगा हुआ है। महोना पश्चिम गांव में छोटे से घर के भीतर 11 लोगों का शव मिलने से पूरा इलाका दहशत में है। ऐसे में अगल बगल रहने वालों का हाल क्या होगा ये वही बयां कर सकते हैं।
साथ में उनके वह रहे हैं 11 मनई। हाँ,
अचानक ही कैसे हो गया, कुछ पता चल पाया अभी तक?
अब हम साहेब बता नहीं सके, हम बच्चन के लड़के अपने देखो नान नान है, इन्हें के लड़के पड़ी थे यही में पड़ी रही थे और हम साहेब कुछ नहीं जाना।
जमालुद्दीन के घर में ताला लगा हुआ है, घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। आसपास के लोग खुद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर कैसे 11 लोगों का पड़ोस में कत्ल हो गया और उन्हें भनक तक नहीं लगी। इस घटना में घर के मुखिया जमालुद्दीन का शव छत से लटकता हुआ पाया गया था, जबकि बाकी 10 महिलाओं के गर्दन काटे गए थे। जमालुद्दीन के एक भाई की मौत हो चुकी है और एक भाई कई साल से लापता है। इन दोनों भाइयों का परिवार भी जमालुद्दीन के साथ ही रहता था। जमालुद्दीन के सबसे छोटे भाई अनीस करीब 10 किलोमीटर दूर अपने पैतृक गांव बहादुरपुर में रहते हैं, उन्होंने हमें बताया।
इसके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, जानबूझ के लोगों ने किया है, जिसकी मैं सही से जांच करवाना चाहता हूँ। FIR के टाइम पे एक्चुअली में जो है ये पेपर्स हमें नहीं मिले थे, इसलिए मैं भी सहमा हुआ था कि खुद या कैसे मैं नहीं बता सका। जब मुझे पेपर मिले तब मैं स्टैंड हुआ सही तरीके से। उन्होंने जिनसे उनकी दुश्मनी थी सब लोगों का नाम उन्होंने अंकित किया है।
जमालुद्दीन के घर से कुछ नोट्स मिले हैं जिनमें उन्होंने दिन प्रतिदिन की कुछ बातें लिखी हैं। इसे घटना के बारे में जानने का सबसे बड़ा सूत्र माना जा रहा है, लेकिन अभी इसकी वास्तविकता की जांच हो रही है। इस घटना में सबसे हैरान करने वाला पहलू ये है कि मरने वालों में जमालुद्दीन को छोड़कर सभी महिलाएं ही हैं। घटना के दिन 2 छोटे लड़के भी घर में मौजूद थे लेकिन दोनों को खरोंच तक नहीं आई है। यही नहीं, 2 महिलाएं भी जीवित बची हैं लेकिन उनका कहना है कि उन्हें दवाई पिलाई गई थी और उसके बाद क्या हुआ उन्हें पता नहीं है। इनमें एक जमालुद्दीन की पत्नी है और दूसरी उनकी बेटी। जमालुद्दीन की पत्नी कहती हैं।
कुछ नहीं पता, खाली बीमा करा, खाली वो कर रहे हैं बस, अब हमें होश नहीं रहे।
घटना को हुए एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन पुलिस अभी भी घटना के बारे में अंदाज से ही काम चला रही है। जांच टीमें नमूने लेकर जा चुकी हैं और पुलिस उनकी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जमालुद्दीन के भाई भले ही इस घटना का इल्ज़ाम किसी और पर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी भी आत्महत्या के एंगल से ही घटना की तफ्तीश कर रही है। अमेठी के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह कहते हैं,
वहाँ पर उसका लिखा हुआ नोट्स मिला है, वो नोट्स को अभी भेजा गया है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के मिलान के लिए। उसमें बहुत सारी चीजों को हम लोग कर रहे हैं, जाँच उसकी चेक कर रहे हैं। एफ आई आर तो भाई को उसे कराई है जो 302 कराई है, लेकिन ऐसा नहीं है, 302 तो नहीं है, उसने जो किया है खुद किया है, लेकिन किन कारणों से किया है वो कारण आना चाहिए, किया तो खुद है।
गांव के लोग भी जमालुद्दीन की किसी से दुश्मनी की बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जमालुद्दीन की आर्थिक तंगी की बात भी कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा है। मोहना पश्चिम गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य डॉक्टर बिलाल अहमद कहते हैं,
ये आर्थिक तंगी अपने आप जरूर झेलते रहे हो, 17 लोगों का इनका परिवार था, लेकिन ये कभी किसी से कुछ कहे नहीं, ना रिक्वायरमेंट किए हैं मुझे पैसा चाहिए या मुझे कुछ इमदाद चाहिए, कभी किसी से कहे नहीं। बाकी ये बहुत मिलनसार आदमी थे, सबसे मिलते थे, किसी के प्रोग्राम में बड़ा टाइम देते थे।
बहरहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अभी तक उसके हाथ कुछ खास सुराग नहीं लगे हैं। वहीं गांव के लोग इस घटना से हैरान भी हैं और दहशत में भी हैं, लेकिन सबसे बुरी स्थिति जमालुद्दीन के उन पड़ोसियों की है, जिनका कहना है कि उन्हें हर वक्त वही मंजर दिखाई देता है जो 4 जनवरी की सुबह उन्होंने अपने पड़ोस के घर में देखा था। समीर आत्मज मिश्र, BBC अमेठी।
और अब इस रिपोर्ट के बाद वक्त है आपकी चिट्ठियां सुनने का।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और मेरे साथ हमेशा की तरह
वंदना
बैठी हुई हैं। वंदना, इससे पहले कि आप चिट्ठियों की तरफ अपने हाथ बढ़ाएं, एक ईमेल मैं पढ़ना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो। कविता भेजी है डॉक्टर लक्ष्मण झा, साउंड हेल्थ क्लिनिक, डॉक्टर्स लेन, दुमका, झारखंड से। लिखते हैं, लाख तर्क आप दे दें पर आपने भी अच्छा सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। विश्व भारती और घटना चक्र को अपने प्रसारण से क्षण में हटा दिया। वादा तो आपने किया हमसे, BBC का विस्तार करते हैं, पर हम कभी कभी ये नहीं सोचते कि अधिकांश लोग अभी भी गांव में बसते हैं। जो बात पहले थी वो बातें अब कहाँ हैं? वो स्वाद व्यंजन, आत्मीयता का प्रीति भोजन अब कहाँ है?
इन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज से
अपनी शिकायत हमारे तक पहुंचा दी है, लेकिन आत्मीयता तो खत्म नहीं हुई है साहब। डॉक्टर साहब लक्ष्मण जी, 2 कार्यक्रम जो समाप्त करने का फैसला था उसके बारे में और भी चिट्ठियां मुझे लगता है
होंगी। बहुत सारी हैं, और तो ये श्रीनाथ सिंह हैं और ये भोजपुर बिहार से इन्होंने लिखा है, पहला इनका पत्र है। इन्होंने भी कहा है कि कार्यक्रम तो आपने अब बंद कर ही दिए हैं।
और इन्होंने टाइपराइटर से ये,
या बिल्कुल ऐसी चिट्ठी बहुत कम आती है।
टाइप कर किए हुए चिट्ठी तो मुझे अरसा हो गया पड़े
हुए। जी, और ये बोलते हैं कि आप कम से कम विवेचना मत बंद करिए, अगर ये बंद हो गई तो कहना पड़ेगा कि बड़े शौक से सुन रहा था जहाँ हम ही सो गए दास्तां कहते।
क्या बात है, क्या बात है। ये श्रीनाथ सिंह बुजुर्ग हमारे श्रोता हैं, ऐसा लगता है
लिखा साल में लिखा साल है कि अगर बंद कर भी देंगे तो अब हमें
स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। आप जानते हैं विवेचना के बारे में तो ऐसा कोई न तो कोई बात है, न कभी इस तरह का कोई जिक्र आया।
महावीर स्वामी है, इन्होंने भी एक तरह से तारीफ की है, लेकिन शिकायत सबकी यही है।
जी हाँ, मुझे लगता है कि हमारे और भी श्रोता जिन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी है उनकी भी ये शिकायत होगी कि 2 कार्यक्रम विश्व भारती और घटना चक्र बंद कर दिए गए हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि एक ज़माना था जब आधे घंटे का कार्यक्रम अगले आधे घंटे में रिपीट होता था, वैसे का वैसा कार्यक्रम, उसका टेप चलाया जाता था। और फिर जब 4 कार्यक्रम रिस्टोर हुए तो उसमें भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हम रिपीट करते थे, क्योंकि जितना गैप 2 कार्यक्रमों के बीच में होता है उसमें बहुत ज्यादा खबरें बदलती नहीं हैं।
कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा,
तब हमें, अगर आपको याद हो वंदना जी, शिकायत करते थे श्रोता कि इससे अच्छा तो कार्यक्रम बंद ही कर दीजिए, आप क्यों रिपीट करते हैं। कोशिश हमारी ये है कि आधे घंटे में आपको दुनिया जहान की खबरें, न्यूज मिल जाए, विश्लेषण मिल जाए, लोगों के इंटरव्यूज मिल जाए, फीचर्स मिल जाए, ये सब चीज़ें हमारी कोशिश रहती है कि आधे घंटे में दें। और सुबह जब सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार भारत, उसमें आने वाले दिन में यानी पूरे दिन भर क्या क्या होने वाला है और जो पिछली रात हुआ है या पिछले दिन हुआ है उसका मतलब क्या है
जी,
ये हम अगर अच्छे ढंग से कर पाए तो ये हमारी सफलता होगी। जहां तक कार्यक्रमों को बंद करने का सवाल है, वो फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि बीबीसी अपने पूरे जो रिसोर्सेज हैं वो डिजिटल की तरफ ज्यादा लगा रहा है। रेडियो तो एक बहुत ही स्तंभ है बीबीसी का, बीबीसी हिंदी सर्विस का, और रेडियो बहुत महत्वपूर्ण है भारत में, जैसा कि आपने ये सुना भी होगा। हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बीबीसी के लिए महत्वपूर्ण है, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जो डिजिटल की तरफ ध्यान जा रहा है तो उसमें आप bbchindi.com सुनते हैं, पढ़ते हैं, और हमारा फेसबुक है, ट्विटर है, ये दो कार्यक्रम इसलिए इनको
लेकिन आत्मीयता कम नहीं हुई है। अरुण कुमार छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, इन्होंने ईमेल लिखा है कि दिन भर कार्यक्रम में स्वर्गीय ओमपुरी जी का साक्षात्कार सुना और ये एक तरह से बीबीसी द्वारा सच्ची श्रद्धांजलि थी। और भी कई ऐसी ईमेल हैं जो ओमपुरी पे जो कार्यक्रम आया उस पे लोगों ने काफी लोगों उसको ने, पसंद किया है उसको।
अब हमारे साथ तो बहुत ही इत्तेफाक ऐसा रहा कि सिलीगुड़ी हम लोग गए थे, ओमपुरी साहब के साथ 2-3 दिन बिताए और बहुत ही दोस्ताना व्यवहार उनका था। हमारे पास जो उनका इंटरव्यू था वो उस दिन प्रसारित किया, बहुत सारे श्रोताओं को पसंद आया, धन्यवाद।
और एक हमारे नाराज श्रोता है कर्नाटक से सीताराम, इनकी शिकायत ये है कि जो सुबह के कार्यक्रम है मैं बहुत सालों से कम 30 साल से सुन रहा हूँ, इस तरह का बुरा कार्यक्रम जो सुबह आता है वो हमने पहले नहीं सुना। सुझाव है कि सुबह के कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा विश्लेषण हो, अंतर्राष्ट्रीय समाचार हो और बेकार के इंटरव्यू ना हो।
जी हाँ, इनकी जो नाराजगी है उसकी वजह यह है कि जो विवेचना कार्यक्रम है जो दिन भर में प्रसारित होता है और वो फिर पुनर्प्रसारित होता है नमस्कार भारत में, तो इनका ही नहीं दूसरे और तमाम श्रोताओं का कहना है कि उससे बहुत समय सुबह का निकल जाता है। तो हम उसकी कोशिश ये कर रहे हैं, चाहे विवेचना कार्यक्रम हो या दुनिया जहान हो, उसका एक छोटा वर्जन वो सुबह रिपीट करेंगे। पूरा का पूरा कार्यक्रम अब हम शायद
रिपीट
ना करें।
जो सुनना चाहें वो
वेबसाइट पे
आकर
के सुन सकते हैं, और इतनी मेहनत लगती है इन कार्यक्रमों को बनाने में, तो एक कार्यक्रम ही रहे तो उससे थोड़ा सा ज्यादती हो जाती है। तो श्रोताओं, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप कार्यक्रम हमारे उसी शिद्दत के साथ सुनते रहें, हम भी उसी शिद्दत के साथ कार्यक्रम बनाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर नाराजगी हो तो जरूर चिट्ठी लिखिएगा। चलते चलते मैं पता बता दूं श्रोताओं को, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
तो श्रोताओं, आपने अपनी भेजी हुई चिट्ठियां भी सुन ली, और अब कार्यक्रम में खेल समाचारों की बात करते हैं। राखी शर्मा मौजूद हैं। राखी
जी, भारत ए को पहले अभ्यास मैच में मात देने वाली इंग्लैंड एकादश की टीम को आज दूसरे अभ्यास मैच में 6 विकेट से मात खानी पड़ी है। भारत के खिलाफ 15 तारीख से शुरू हो रही वनडे सीरीज से पहले ये उनका आखिरी अभ्यास मैच था। इंग्लिश टीम की तरफ से जॉनी बेस्ट्रो ने 64 और एलेक्स हेल्स ने 51 रन की पारी खेली, जिस पर भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे और संजू सैमसंग की अर्धशतकीय पारियां भारी पड़ी। वनडे सीरीज से पहले इंग्लिश टीम के लिए राहत की बात यह है कि उसके बल्लेबाज जो रूट भारत आ चुके हैं। रूट ने भारत दौरे पर हाल ही में कुछ अच्छी टेस्ट पारियां खेली थी, जिसमें राजकोट में खेली 124 रन की पारी शामिल है। और वहीं रणजी फाइनल मुकाबले के आज तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक मुंबई की टीम ने दूसरी पारी में गुजरात पर 108 रन की बढ़त हासिल कर ली है। मुंबई के अब भी 7 विकेट बाकी हैं दिन का खेल खत्म होने तक। क्रीज पर सूर्य कुमार यादव 45 और आदित्य तारे 13 रन बनाकर मौजूद हैं। इससे पहले मुंबई ने पहली पारी में 228 रन बनाए थे, जिसके जवाब में गुजरात ने पहली पारी में 328 रन जोड़े। दूसरी पारी में गुजरात के लिए 3 विकेट चिंतन गाजा ने झटके। और वहीं टेनिस से एक खबर है कि भारतीय खिलाड़ी यूकी भामरी ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वालिफायर के तीसरे दौर में जगह बना ली है। उन्होंने क्वालिफाइंग मुकाबले के दूसरे दौर में सर्बिया के पेट्ज़ा कर्स्टन को 6-3, 6-4 से हराया।
बहुत बहुत शुक्रिया राखी शर्मा खेल की खबरें पढ़ने के लिए। और अब कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। वे 21 फरवरी 2017 से कार्यभार संभालेंगे। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें शनिवार को पोंगल त्योहार से पहले सांडों की लड़ाई जल्लीकट्टू आयोजित करने का फैसला सुनाने का अनुरोध किया गया था। चीन ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि साउथ चाइना सी में द्वीप बनाने के नतीजे चीन को भुगतना होंगे। पोलैंड में अमेरिकी टैंकों और सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती को रूस ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इसराइल फलस्तीनी संघर्ष पर पेरिस में अगले रविवार प्रस्तावित सम्मेलन की कड़े शब्दों में निंदा की है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। फिलहाल मोहनलाल शर्मा को अपने सहयोगियों के साथ विदा दें और bbchindi.com पर आते रहें, जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। नमस्कार।